काफी लोग जानते हैं राधा के बारे में, उससे ज्यादा लोग नहीं जानते। वृंदावन में तो सबके मुख में नाम ही है राधे राधे। खैर, हम लोग राधे राधे नहीं बोलते, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि शास्त्रों के अनुसार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और शास्त्रों में विधि है कि हरे कृष्णा बोला जाता है, क्योंकि हरे का मतलब है राधा, जो हरि का मन हर ले उसका नाम हरे, इसलिए हरे कृष्णा बोलते हैं। बट ठीक है, राधे राधे बोलना में कोई गलत नहीं है, ब्रजवासी बोलते हैं, कई लोग राधा श्याम बोलते हैं। कैन यू क्लोज दिस, आवाज बहुत है, सर में दर्द हो रहा है। सो और कई वैष्णव संप्रदायों में राधा का नाम नहीं है, जैसे मैं बता रहा था श्री मध्वा वल्लभ संप्रदाय में तो है, और पूरे संसार में किसी को राधा के बारे में नहीं पता। कृष्ण के बारे में जरूर पता है, कृष्ण गॉड ऑफ लव है, एटलीस्ट इतना तो जानते हैं लोग, मगर राधा है कौन और उनके बारे में जानना ही क्यों है। तो आज हम ये दो क्वेश्चंस का आंसर समझना चाहेंगे कि राधा कौन है और उनके बारे में क्यों जानना है। सो श्रीमती राधा रानी कौन है? कैन यू जस्ट टेल हर, जस्ट टेल हर। ओके, सो राधा कौन है और उनकी पूजा हम क्यों करें? सो राधा रानी कौन है? राधा का नाम क्या शास्त्रों में आया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मगर ये सब डिस्कस करने से पहले डिबेटेबल टॉपिक्स, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि राधा रानी कौन है। राधे जय जयो माधव दयिते, दयिते मतलब होता है कि प्रेममयी राधा। अगर कोई वृंदावन में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण को प्रेम करता है तो वो राधा है। अगर कोई वृंदावन में सबसे ज्यादा जिसकी सेवा भावना है वो राधा है। अगर कोई वृंदावन में सबसे ज्यादा भगवान के लिए प्राण न्यौछावर कर सकता है तो वो है राधा। वैसे तो वृंदावन में और भी भक्त हैं, यशोदा माँ, नंद बाबा, भगवान के सखा, ये सारे हैं, मगर उनमें से भी सबसे ज्यादा जो जबसे ज्यादा भक्ति कौन सी किस में है? राधा रानी के पास है, क्योंकि इसलिए राधा रानी को क्या बोलते हैं? भक्ति देवी। भक्ति देवी भी बोला जाता है राधा रानी को। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, राधा बिना कृष्ण नहीं मानी। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि राधा के बिना मैं कृष्ण को नहीं मानता, यहां भी लिखा है शास्त्रों में। सो राधा के बिना कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती, असंभव है। अगर आप चाहोगे कि हम कृष्ण कृष्ण बोल लें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। इसलिए अब आप कहोगे भी, इसलिए और वैष्णव संप्रदाय में सिर्फ कृष्णा नहीं बोला जाता, श्री कृष्णा बोला जाता है। सुने, या आप साउथ में भी जाओ श्री कृष्णा बोला जाएगा, क्योंकि श्री कौन है? श्री या तो राधा हो गई या लक्ष्मी जी हो गई, क्योंकि राधा क्या है? राधा महालक्ष्मी है, एक लक्ष्मी है, एक महालक्ष्मी। करोड़ों लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती है, लक्ष्मी सहस्त्र सद संभ्रम सेव्य मानम। सो राधा आदि लक्ष्मी है, जैसे कृष्णा आदि विष्णु है। सो सबसे बेस्ट, प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद राधा कौन है, तो प्रभुपाद ने बोला, वैसे प्रभुपाद ने आइडियली प्रभुपाद ने आंसर दिया, राधा ऑर्डिनरी गर्ल है। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण के बिना राधा की कोई वैल्यू नहीं है, ये भी बात है। क्योंकि अगर भगवान को हटा दें तो राधा की क्या वैल्यू है, मगर अगर कृष्णा है तो राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि राधा कृपा की मूर्ति है। अगर कृष्ण भगवान अपनी सारी कृपा निकाल के उसकी मूर्ति बना दे तो राधा बन जाएगी। सो भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति होती है? नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं नाम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न बहु न श्रुते न वा। भगवान को ज्यादा प्रवचन से, ज्यादा सुनने से, ज्यादा प्रवचन मतलब उपनिषद वेदों के और ज्ञान के प्रवचन करने से प्राप्ति नहीं होती, ज्यादा सुनने से। आप अपने 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 सिद्धांत, अपने दर्शन शास्त्र ये सब पढ़ते जा रहे हो, नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की प्राप्ति होती है बल से। कौन सा बल? कृपा बल। कृपा बल क्या है हमारे पास? राधा है और वृंदावन में बलराम जी है। बलराम जी का भी नाम है ना बल। तो ये दोनों, बलराम जी और राधा, ये दोनों हमारी मदद करते हैं कि हम कृष्ण तक पहुंच सकें। बलराम जी हमारी मदद करते हैं कि हमें बल मिले माया से फाइट करने का। बल चाहिए, नहीं चाहिए माया से फाइट करने का, क्योंकि माया बहुत सारे संशय डालेगी माइंड में। माया बार बार हमारे मन को अपनी तरफ खींचती रहेगी। सो बल चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में सबसे बीच में किसकी मूर्ति रखी? कृष्णा बलराम। देख पता है ना इस्कॉन वृंदावन का नाम क्या है? कृष्णा बलराम। और साथ साथ जब बल आ जाएगा माया से लड़ने का, तो माया से प्रभावित नहीं होंगे। जब माया से प्रभावित नहीं होंगे तो क्या होगा? तो इस प्रोग्राम में आएंगे हम, है नी? अगर माया से प्रभावित होते तो इस प्रोग्राम में आते ही नहीं। कितने लोग नहीं आए, माया में फंस गए वो। सो बलराम जी की कृपा हुई नहीं। ऑफ कोर्स वो नहीं आना चाहते थे, इसलिए बलराम जी की कृपा नहीं हुई। सो अब आप आ गए यहाँ, अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे आके क्या करना है? यहाँ पे आके कृष्ण की प्राप्ति करनी है। कृष्ण की प्राप्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण की प्राप्ति तब मिलती है जब भगवान में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि, तो वो रुचि कौन देता है? वो श्रीमती राधा रानी देती है। सो बलराम जी बल देते हैं माया से लड़ने का कि हम प्रोग्राम में आ जाएं, और प्रोग्राम में जो आनंद देती है वो कौन देती है? वो राधा रानी देती है। हमने कीर्तन किया, हमें आनंद कौन दे रहा था? कृष्णा नहीं, एक्चुअली राधा दे रही थी। सो कृष्णा राधा के थ्रू भक्तों तक पहुंचते हैं। बिना राधा के कृष्ण तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए वृंदावन में सब लोग, जितने भी भक्त हैं, जितने भी घास भी है, पानी भी है, हवा भी है, वो सब केवल राधा गोविंद की जो लीला है, राधा गोविंद की लीला को सहायता करने के लिए सेवा करते हैं बस। ओके, मगर पॉइंट यह कि राधा है कौन? ये तो राधा का कार्य है, नहीं हमारी मदद कर रही है। कैन यू मिस्टर त्यागी जी, कैन यू जस्ट क्लोज दिस? शोर क्यों है इतना? हाँ ठीक है। सो राधा कौन है? राधा का नाम वैसे कई लोग कहते हैं शास्त्रों में नहीं आया, कई लोग ऐसा कहते हैं, हम तो नहीं मानते। जैसे मैं बता रहा था अभी, जो आपकी जय कृष्णिया है, एक सेक्ट है पंजाब में, उसमें और जम्मू में, जो लोग कहते हैं हम राधा को नहीं मानेंगे। कहाँ है राधा का नाम? गीता में राधा का नाम है? पढ़ा है कभी? नहीं है। अब गीता तो कृष्णा ने ही बोली है, तो कोई कुछ लोग कहते हैं भी जब कृष्णा ने ही राधा के बारे में नहीं बोला, अगर आप कह रहे हो इतनी उनकी प्रेम प्रेयसी है और इतनी बड़ी भक्त है, तो गीता में तो बोलना चाहिए राधा का नाम, मगर है ही नहीं, तो हम नहीं राधा को मानते, ना वेदों में, ना है, ना कहीं है। मगर और भागवतम में भी राधा का नाम नहीं है। भागवत शास्त्र जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको भागवत शास्त्र को भगवान की लीलाओं के लिए सबसे टॉप मोस्ट शास्त्र माना जाता है, परमहंस शास्त्र, उसमें भी राधा का नाम ये लोग कहते हैं, इसलिए हम नहीं वर्शिप करेंगे। मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद अपनी किताबों में और कई आचार्य अपनी किताबों में ये मेंशन कर रहे हैं कि राधा का नाम कहाँ नहीं है। आंखें फूट गई हैं क्या? वेदों में अगर आप वेदों का ऋग्वेद पढ़ो, ऋग परिशिष्ट, उसमें राधा माधव का नाम है। छांडिको उपनिषद पढ़ो, उसमें श्यामा शबलश्च शबलश श्यामा, श्यामा का नाम है। श्यामा कौन है? राधा। श्याम श्यामा नहीं बोलते, सुना है निम्बार्क संप्रदाय में बोलते हैं श्याम श्यामा। गौतमी तंत्र में राधा का नाम है, राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी बोला गया है। बृहद नारद पुराण में, हरिवंश पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, कहा नहीं है राधा का नाम? बृहद नारद पुराण में सब जगह, तो राधा, सनत कुमार समेता में तो बार बार राधा का नाम है। सो बल्कि सनत कुमार समेता में सनत कुमार कह रहे हैं कि कृष्ण को क्या बोला जाता है? आत्माराम बोला जाता है, नहीं आत्माराम। क्यों बोलते हैं भगवान को आत्माराम? क्योंकि जो उपनिषद है, वेद कहते हैं कृष्ण को आत्माराम, इसलिए बोला जाता है क्योंकि कृष्ण अपनी आत्मा में रमन करते हैं, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, भगवान आंख बंद करके अपने में संतुष्ट है। मगर सनत कुमार समेता में, सनत कुमार कह रहे हैं भगवान को आत्माराम क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान की आत्मा कौन है, राधा है, और राम मतलब रमन। कृष्णा हमेशा राधा के गुणों में, उनके नाम में रमन करते रहते हैं। भक्त कृष्ण का नाम लेते हैं और कृष्णा राधा का नाम लेते हैं। एक्चुअली कृष्णा खुद बता रहे हैं, काग्नि पुराण में आता है, हरिवंश पुराण में, तो चंद्रदेव को बता रहे हैं, उनमें बीच में डिस्कशन हुई है कृष्णा चंद्रदेव में, और कृष्णा कह रहे हैं देखो चंद्रदेव, अगर कोई मेरा नाम लेता है तो उसको बहुत, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर अगर कोई राधा का नाम लेता है तो मेरे नाम से करोड़ों गुना ज्यादा ऊपर है लेना, जितना फायदा मेरे नाम से होगा उससे करोड़ों गुना ज्यादा फायदा राधा के नाम से होगा, जितना फायदा आपको एक एकादशी करने से होगा उससे करोड़ों गुना फायदा आज राधा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी आज भी जन्माष्टमी है, राधा रानी का जन्म दिवस मनाने से होगा। सो एक तरफ तो आपने पूरे जीवन एकादशी की, और एक तरफ आज के दिन आपने राधाष्टमी कर ली, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो आज के दिन में जो आपने भक्ति की है वो करोड़ों गुना अदा हो जाएगी एक अचीव, करोड़ों एक अचीव करने से, ये भी शास्त्रों में लिखा है, इंपॉर्टेंट है नहीं है। बल्कि कृष्णा खुद कहते हैं कि जो मेरा जन्म दिवस है जन्माष्टमी, पूरा संसार उसमें प्रसन्न होता है, मगर राधाष्टमी आती है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। ये राधा रानी है, बल्कि एक्चुअली हमारे आचार्यों ने कई किताबें लिखी राधा पे, और जैसे उदाहरण के लिए रूपा गोस्वामी ने ललित माधव लिखी है, वेदक माधव लिखा है, प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा रसोदा निधि लिखी है, गोविंद लीला अमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जयदेव चंडीदास, उन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं, जीवा गोस्वामी ने गोपाल चंपू में बहुत राधा रानी के बारे में बताया हुआ है, मतलब कोई कमी नहीं है उनके बारे में जानने में। मगर उनको जानोगे कैसे राधा को, ये मुझे बताओ, क्या तरीका है जानने का, कृष्ण को जानने का क्या तरीका है? केवल एक ही तरीका है, राधा और कृष्ण को जानने का केवल एक ही तरीका है, उनके बारे में सुनना बस, और कोई तरीका नहीं। इसलिए हम आज उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो शिला प्रभुपाद से बोला था किसी ने, प्रभुपाद मद्रास में गए थे तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद आप राधा रानी के बारे में बोलिए, प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। तो वो जो थे ना, वो जो काफी बड़े रिच लोग थे, उनके ऐसे गए थे तो बार 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 प्रभुपाद को बोल रहे थे कि प्रभुपाद प्लीज आप बोलिए 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 बोलिए, प्रभुपाद बार बार बोल रहे थे मैं नहीं बोलूंगा, तो पीछे पड़ गए वो। फिर प्रभुपाद ने अंत में बोला देखो मैं योग्य नहीं हूँ बोलने के लिए, तुम्हें बोलना तो तुम आके बोल दो, मैं सुन लेता हूँ। तब वो चुप हुए। सो वैसे हम चर्चा नहीं करते राधा रानी के बारे में, कहाँ करते हैं, करते नहीं है ना, कभी भी नहीं करते, मगर आज के दिन हम जरूर चर्चा करते हैं, क्योंकि राधा रानी के जानने के बारे में हम योग्य नहीं है, मगर राधा रानी के बारे में बिना जाने भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। सो एक तो योग्य नहीं है, मगर बिना जाने भी काम नहीं बनेगा। सो इसलिए लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना हमें कि वहां तक तो कैसे पहुंचना है। तो राधा का नाम हर शास्त्र में, मगर भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम छुपा के रखा है। अब सुखदेव गोस्वामी का नाम क्या, शुका महामुनि, पता है ना, श्रीमद भागवतम में श्री शुका उवाचा आता है, सुना है, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम परीक्षित महाराज को बोली थी। और शुका मतलब पता क्या होता है, तोता। तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते के अवतार है, ऐसा कहा जाता है। और ऑफ कोर्स अगर राधा रानी के तोते हैं तो इसका मतलब है कि स्पेशल होंगे, नहीं पैरेट है ना भगवान राधा रानी के, स्पेशल। कृष्ण का भी अपना पैरेट है और राधा का भी अपने पैरेट है। तो जब कृष्ण मथुरा गए वृंदावन छोड़ के द्वारका, तो अपना पैरेट लेके चले गए थे। सब पैट्स नहीं होते सबके, आजकल कुत्ते रखते हैं, पहले पैरेट्स बैठा है, कुत्ते तो नॉनसेंस है। एटलीस्ट पैरेट राम राम तो बोलेगा। सो भगवान के पैरेट का नाम क्या, मैं भूल गया, क्या भी आया कुछ पता है, आई जस्ट फॉरगॉट। सो भगवान ऐसी राधा रानी का भी पैरेट अपना पर्सनल। सो राधा रानी का जो पैरेट है वो उड़ते उड़ते सुखदेव गोस्वामी कहाँ पहुंच गए, कैलाश पहुंच गए। और कैलाश जब पहुंच गए तो वहां पे शिव जी पार्वती जी को भागवत कथा सुना रहे थे, अमर कथा। अमर कथा है, इसको अमर कथा कहते हैं ना। तो अब स्त्रियों का तो आपको पता ही है, माइंड तो लगता नहीं, पता नहीं क्या सोचती रहती है। तो पार्वती सुनते सुनते सो गई। जैसे जब नारद मुनि जब जब इंद्रदेव ने हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने चला गया, तो इंद्र ने सोचा ठीक है, पीछे से हिरण्यकशिपु की जो वाइफ है कयाधु थी ना उसकी वाइफ का नाम, तो उनको पकड़ के मार देते हैं, क्योंकि ना रहेगा बांस, मतलब जब बच्चा ही नहीं होगा, कोई कुली चलाने वाली नहीं होगा, हिरण्यकशिपु इतना दबंग है तो उसका बेटा कितना दबंग होगा। कयाधु उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें कहा भी मार देते हैं बच्चे को, खत्म करते हैं, पता नहीं पहली एक प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई तो हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारे देवताओं ने अटैक करके कयाधु को पकड़ किडनैप करके ले गए। तो कयाधु को ले गए तो हरे कृष्ण उसको ले गए तो बीच में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने इंद्रदेव को कहा कि देखो ऐसा है कि तुम कयाधु को मारो मत, क्योंकि इसके पेट में जो पुत्र है वो महान भागवत है, महान भक्त है। इन सारे देवताओं ने कहा कि भाई ठीक है चलो। उन्होंने कहा कि ये तो हिरण्यकशिपु का पुत्र कोई असुर है, वो इतना बड़ा, उसका पुत्र कोई देवता थोड़े ना होगा। तो नारद मुनि ने कहा मेरी बात पे विश्वास करो, ये महान भागवत है। कभी कभी भगवान के भी असुर पैदा हो जाते हैं। कृष्ण के पुत्र कौन था? नरकासुर, असुर बन गया। कृष्ण ने खुद ने उसका वध किया, कृष्ण ही वध किया नरकासुर का, उसका नाम भौमासुर भी था। ऐसे ही कभी कभी असुर के पुत्र भी महान भक्त निकलते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज हैं, महान भक्त हैं। तो इंद्रदेव ऑफ कोर्स वो विश्वास करते हैं नारद मुनि पे। नारद मुनि फिर कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वैसे नारद मुनि बाल ब्रह्मचारी हैं, पता है, मगर फिर भी एक स्त्री को अपने आश्रम ले गए। शिला प्रभुपाद उसके पौपट में लिख रहे हैं कि कोई ब्रह्मचारी अपने घर अपने आश्रम में स्त्री थोड़े ना रखेगा, नहीं कोई रखेगा, कोई अलाउ करेगा। अगर हमारे सेंटर में हम किसी माताजी को लेकर रहने लगे तो कहेंगे क्या हो रहा है, ऑड। बट फिर भी नारद मुनि ले गए उनको अपने आश्रम में। नारद मुनि ने सोचा कि जो पुत्र है गर्भ में वो तो महान भागवत है, और नारद मुनि ने कहा कि अभी से मैं प्रहलाद को गर्भ में ही शिक्षा दे दूंगा भक्ति की, नारद मुनि ने सोचा। ले गए तो नारद मुनि वहां पे बैठ गए, रोज कयाधु को कथा सुनाते थे। तो कयाधु भी क्या होती थी कथा सुनते सुनते, मैं इसलिए बता रहा था कथा, स्त्रियों का काम उनका दिमाग नहीं लगता ज्यादा, मतलब ऑफ कोर्स मोस्टली उनका दिमाग हजार जगह रहता है। सो एनीवे, सो पार्वती क्या कह रहे सुभद्रा अर्जुन, हाँ ये लो वो भी सो गई थी। सो अब ये तो प्रूफ हो गया कि स्त्रियों का कुछ नहीं हो सकता है। वो लोरी सुनने की आदत होती है ना, ये सुनाने की आदत। एनीवे बाय द वे, तो क्या हुआ, तो हरे कृष्ण, मैं क्या कह रहा था, कौन सो गया, पार्वती। इसको पकड़ना जरा। पार्वती सो गई और सुखदेव गोस्वामी कथा बोलते, सॉरी शिवजी कथा बोलते रहे। और वहां पे सुखदेव गोस्वामी तोते थे ना, उड़ के आए थे, वो छुप के सुन रहे थे। तो शिवजी ने जब पार्वती उठी तो मतलब ऑफकोर्स शिवजी तो भागवत बोलते बोलते अपने ही धुन में थे, उनको पता है, वो आंख बंद करके बोल रहे थे, भगवान की भक्ति में उनको आनंद है, उनको समझ में नहीं आया कि पार्वती सो गई। वो बोलते जा रहे थे, मगर शिवजी ने कहा कि देखो अगर यहाँ पे कोई भी जीवित व्यक्ति होगा तो तुम ही सुन लो बस, बाकी यहाँ पे कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जीवित जंतु नहीं होना चाहिए। मगर सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं, और शिवजी को एकदम से पता लग गया कि कोई सोतोता सुन रहा है। तो शिव जी ने अपनी एक ही अपनी तीसरी आंख खोली और तोते को, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, सो क्या किया उस तोते ने, उड़ते 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 वो भागे वहां से, तो मर जाएंगे। तो भागते भागते कहाँ चले गए वो, भागते 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 व्यासदेव जी के जो पत्नी है उनका नाम क्या है, नाम ही तो पूछ रहा हूँ मैं। सो नाम उनकी सुखदेव गोस्वामी की पत्नी का नाम है बटिका, ओ सॉरी सॉरी, ये व्यास व्यासदेव की पत्नी का नाम क्या है, बटिका, तेल नहीं आता बटिका कोकोनट बाटिका, बस उसी उसी से याद कर लो, मैंने उसी से याद किया। सो उनकी पत्नी का नाम बाटिका, तो बटिका बटिका, तो उनके घर में चले गए सुखदेव गोस्वामी। और जब उनके घर में गए तो फिर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसकी पत्नी है, व्यासदेव की। और फिर जब सुखदेव गोस्वामी ने तो अमर कथा सुन ली, और फिर जब जब घर में व्यासदेव की पत्नी के घर में वो 18 साल रहे, यू कैन इमेजिन, कोई अगर फीमेल 18 साल प्रेग्नेंट रहे तो वो पागल हो सकते हैं, 18 साल प्रेग्नेंट, 18 साल ही रहना। सो फिर व्यासदेव ने कहा भैया निकल क्यों नहीं रहे तुम, तो ऑफ कोर्स अब वो ऑर्डिनरी बच्चे तो है नहीं, नहीं वो तो भगवान राधा रानी के पैरेट है ना, तो अपनी शक्ति से वो घर में ही रहे, जिंदा रहे मगर घर में ही रहे, अपनी शक्ति, वो तो योगी है ना, बहुत बड़े भगवान की पैरेट है। सो वहां पे रहे, तो व्यासदेव ने कहा तुम बाहर आओ, ये कर क्या रहे हो, तुम्हारी माँ को बहुत प्रॉब्लम कष्ट हो रही है। सुखदेव को समझने का, देखो मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि पहली बात तो शिवजी से डर लगता है, वो तो वहां पे भैया, मगर अगर शिवजी भूल भी गए सब कुछ तो उससे ज्यादा मुझे किससे डर लगता है, माया से, जैसे मैं पैदा होऊंगा माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए आप कृष्णा को बुला के लाइए, और कृष्णा अगर मुझे आश्वासन देंगे कि माया कुछ नहीं कर सकती तो मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में, देवी है इच्छुगना मई ममा माया दुरती है, माँ में वह प्रपद्यंते, जो मेरी शरण लेगा उसको माया कुछ नहीं कर पाएगी। तो कृष्णा आए, कृष्णा ने आश्वासन दिया सुखदेव बाहर आ जाओ तुम्हें माया कुछ नहीं करेगी। सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए, और बाहर आते उन्होंने क्या किया, निकल पड़े, बस बाहर आते बड़े हो गए, अपनी शक्ति तो थी नहीं, बड़े हो गए और निकल गए बस, दैट्स ऑल। और जंगलों में घूम रहे थे, तो व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने सोचा कि भी वापस लेना लाना चाहिए सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि ये बहुत बड़े पैदा होते ही ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं इतने बड़े संत हैं, ऑफ कोर्स पुत्र तो थे ही मगर संत हैं, अगर सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का प्रचार करेंगे तो पूरे संसार में प्रचार हो जाएगा, नहीं बहुत क्वालिफाइड है ना, इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी है। तो व्यासदेव ने ट्रिक चली, व्यासदेव ने भागवतम रची, और भागवतम रचने के बाद व्यासदेव ने कुछ हंटर्स को बोला कि जाकर तुम्हें श्लोक बोलते रहो, जब भी जंगल में श्लोक चिल्लाते रहो, गाते रहो, बस जब भी हंटिंग करोगे गाते रहो, सिखा दिया। तो हंटर जाके गाते थे श्लोक, और एक बार सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या सुना, भागवतम के श्लोक सुन लिया। भागवतम में क्या है, भगवान कृष्ण की महिमा है, सुन के वो बेहोश हो गए, और उन्होंने कहा तुमने श्लोक कहाँ से सीखे हैं, तो उन्होंने बोला व्यासदेव ने सिखाए, उन्होंने कहा लो, तो उन्होंने कहा व्यासदेव ने सिखाए तो ठीक है, वो व्यासदेव का सुख है, और उन्होंने पूरी भागवतम व्यासदेव से सुनी, मगर उस भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं था, और सुखदेव गोस्वामी कौन है, राधा रानी के तोते। अब उनको बड़ा अजीब सा लगा कि राधा रानी का नाम ही नहीं है, तो व्यासदेव ने राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिखा भागवतम में, क्यों ऐसा शास्त्र सुना दिया सुखदेव गोस्वामी को जो स्वयं राधा रानी के तोते हैं, क्योंकि राधा रानी का तोता केवल एक ही चीज बोलते हैं, राधा, दैट्स ऑल। सो व्यासदेव एक उसमें एक सीक्रेट थी, सीक्रेट यह थी कि अगर व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को राधा का नाम सुनाते, उसमें राधा के बारे में सुनाते, तो सुखदेव गोस्वामी, ऐसा कहा जाता है, राधा राधा सुनते ही वो 6 महीने तक बेहोश हो जाते, ऐसा कहा जाता है। क्यों बेहोश हो जाते राधा का नाम सुन के? हाँ, हम क्यों नहीं बेहोश हो रहे? क्योंकि जो जिनमें भक्ति कम होती है ना, जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। आते नहीं आते है? गलत नहीं है, मगर जिनकी भक्ति बहुत ज्यादा होती है जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो वो उनको आनंद भी आता है, मगर उसके साथ साथ दुख भी होता है। भगवान से विरह का नहीं, दूर है ना राधा से, तो राधा के बारे में सुनते वो बेहोश हो जाते, सिंपल। इसलिए उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया, मगर फिर भी राधा का नाम लिए बिना वो रह नहीं पाए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में अन्य आराधिता नूनम ये श्लोक आता है। राधा रानी का नाम 2 बार है, 1 बार नहीं है, एक्चुअली 2 बार है। कुछ लोग कहते हैं 1 ही बार है, मगर एक्चुअली 2 बार है। 10th canto 10th skand के 5वें अध्याय में सबसे पहले राधा का नाम है, जब कृष्ण का जन्म हो रहा है। जब कृष्ण का जन्म हो रहा है तो व्यासदेव भागवतम में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ कहां पर हुआ? देवकी और जेल में, ऑफकोर्स लोग ऐसा जानते हैं। सो वहां पे हुआ, तो व्यासदेव लिख रहे हैं भागवतम में, जब भगवान का जन्म हुआ तो वहां पर नदियों में कमल के फूल खिल गए, समुद्र अपने आप हीरे मोती देने लगे और पृथ्वी पे अपने आप अन्न उगने लगा, पेड़ों पे चपातियां उगने लगी, तोड़ के खा सकते हो आप, कुकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। यज्ञशाला में अपने आप अग्नि आ गई, ये सब बता रहे हैं। मगर उसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद क्या नहीं? तो जब व्यासदेव ने सारा भगवान का जन 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 एक्सप्लेन कर दिया तो एंड में व्यासदेव बोल रहे हैं कि भगवान के जन्म पे क्या था, कृष्ण गुणई रमा अक्रीड़ा भूपम। तो व्यासदेव बोल रहे हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान के गुणों से जब पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई, सारे ऋषि मुनि प्रफुल्लित हो गए, तो उसके बाद ये भूमि जहां पे कृष्ण जन्म लिया है वो भूमि रमा आक्रीड़ा भूपम, वो भूमि रमा की क्रीड़ा भूमि बन गई। रमा कौन है? राधा, लक्ष्मी, राधा रानी महालक्ष्मी है। कृष्ण भगवान जब धराधाम पे आए तो उसके बाद राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी ने भूमि अपनी राधा कृष्ण की लीला भूमि बना दी। कृष्ण भगवान के 1 साल बाद राधा रानी का जन्म हुआ है। वृंदावन में वैसे लोग कहते हैं राधा रानी एवं कृष्ण से 1 साल बड़ी है, कंप्लीट नॉनसेंस है, गलत है। वृंदावन में तो बहुत सारी चीजें गलत है, बड़ी नहीं है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से पहले जन्म ले ही नहीं सकती, कृष्ण के बाद उन्होंने जन्म लिया 1 साल बाद। तो अभी वैसे तो जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के अभी भी अष्टमी है ना, 15 दिन बाद हो गया ना। तो कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ और राधा रानी का जन्म अभी शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में, दोनों ही अष्टमी हो गई। मगर इसका मतलब है कि राधा रानी कितनी छोटी है कृष्ण से? 1 साल 15 दिन एक्चुअली, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे 1 साल 15 दिन छोटी है। और उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म हुआ, उसकी दो 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 स्टोरीज हैं कैसे जन्म हुआ, एक्चुअली 3 स्टोरीज हैं कैसे जन्म हुआ उनका, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से जन्म होता है। इसको मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं, लोग 3 स्टोरीज हैं राधा रानी के जन्म की। 3 स्टोरीज क्यों है? क्योंकि भगवान की लीला बार बार होती है, नहीं होती है, भगवान की लीला हर युग में होती है नहीं, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, हर युग में कृष्ण भगवान आते हैं, हर कल्प में आते हैं, कल्प में आते हैं और बार बार भगवान की लीलाएं होती हैं। सो अलग अलग लीलाओं में राधा रानी, जब कृष्ण आते हैं तो राधा रानी भी आती हैं, तो अलग अलग लीलाओं में राधा रानी ने अलग अलग तरीके से जन्म लिया। कैसे जन्म हुआ वो बताने से पहले अभी मैं क्या बता रहा था कि राधा रानी का 1 बार नाम आया है भागवतम में, वो नाम क्या? रमा, एक नाम ये है। और दूसरा नाम है दशम स्कंद के रासलीला जब होते हैं उसमें राधा रानी का नाम आ रहा है। व्यासदेव लिख रहे हैं अन्य आराधिता नूनम, व्यासदेव लिख रहे हैं कि कि कोई अन्य आराधिता, कोई ऐसी गोपी थी जिसने भगवान की आराधना की। अब आराधना में किसका नाम आ रहा है? राधा। तो व्यासदेव ने छुपा के नाम बोल दिया आराधना। राधा का नाम पड़ा ही इसलिए है क्योंकि राधा रानी का जन्म कब हुआ था? राधा रानी का जन्म जिस प्रकार कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र था उस टाइम, उसी प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ था अनुराधा नक्षत्र में, उस टाइम नक्षत्र अनुराधा था, इसलिए वृषभानु जी ने उनका नाम क्या रखा? राधा रखा था इसलिए। और इसलिए भी राधा रखा था क्योंकि वृषभानु को पता था कि ये सबसे बड़ा बड़ी आराधना करने वाली कौन है? राधा है, इसलिए भी नाम राधा रखा था। सो जब राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, एक कथा ये है कि वृषभानु जी तो ये वाली कथा पद्म पुराण में आती है। पद्म पुराण में राधा का नाम है नहीं है, देख लो कथा भी कथा ही है पूरी। सो पद्म पुराण में लिखा है कि जब वृषभानु जी तो वो थे ना, ग्वाले थे ना, सब गाय रखते थे, और तो जब वृषभानु जी ने एक बार वो कर रहे थे खेती, तो खेती करते करते उनका जो हल है वो एक घड़े पे आके रुक गया, जैसे सीता देवी का जन्म हुआ सेम। तो उन्होंने निकाला तो उसमें क्या मिली? एक छोटी पुत्री मिली, और वो पुत्री लेके अपनी वाइफ के पास ले गए। वृषभानु जी की पत्नी का नाम क्या था? कीर्तिदा। कीर्तिदा तो बहुत, क्योंकि वो बहुत खुश है क्योंकि उनकी कोई पुत्री और पुत्र थे ही नहीं। सो एक कथा ये है, और दूसरी कथा ये है कि राधा रानी एक बार वृषभानु जी नहाने गए यमुना जी में, स्नान करने जाते थे नहीं, तो वहां पे उन्हें एक फूल में एक बच्ची बहती हुई मिली, कमल के फूल में। और उस फूल को जब उन्होंने देखा, उसमें तो बच्ची थी, अब उनके बच्चे तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा भगवान ने भेजा है। और उस बच्ची को जब बच्ची को लेके आए तो कीर्तिदा भी बहुत बहुत खुश हुई कि ये तो बड़ा अच्छा है। और फिर जब मगर बच्ची में प्रॉब्लम ये थी कि बच्ची आंख नहीं खोलती थी, बोलती भी नहीं थी, सबको लगा अंधी है और गूंगी है। अब बड़े परेशान, उन्होंने कहा चलो भगवान ने गिफ्ट तो दिया है हमें, मगर ये तो अंधी भी है और गूंगी भी, अब क्या किया जाए। फिर क्या हुआ, ऐसे ही रही वो, मतलब एक साल बाद पैदा हुई है ना कृष्ण के, एक साल ऐसे ही रही वो। सब बहुत घबरा गए, नारद मुनि भी आए घूमते घामते, नारद मुनि भी राधा रानी के दर्शन करने आए, आए नहीं आए? तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, नारद मुनि राधा रानी के दर्शन करने आए। तो वृषभानु जी ने बोला नारद मुनि से कि भी देखो कि हमारी पुत्री तो अंधी है, आप कुछ प्लीज कुछ आशीर्वाद दीजिए कि ये ठीक हो जाए, एक साल से ना बोल रही है ना खा रही, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हम, खा पी रही होगी मगर घूंगी और आंख नहीं खोल रही। नारद मुनि का चिंता मत करो, तुम लोग एक फेस्टिवल करो और उस फेस्टिवल में तुम लोग सबको इन्वाइट करो। एक साल था एक महीना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, एक महीना एक साल, तो इनवाइट करो, आई थिंक एक महीना ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने नारद मुनि के बात पे विश्वास करके सबको इनवाइट किया, और सबसे पहले इनवाइट किसको करेंगे? कृष्णा और सॉरी नंद बाबा, यशोदा माँ को भी इनवाइट, क्योंकि वो तो ब्रजेश्वर है, ब्रज के किंग है। और जब नंद बाबा और यशोदा माँ आएंगी तो कौन आएंगे? कृष्णा भी आएंगे। अब आपको पता होगा कि एक साल पे बच्चा चलने लगता है, सुना है ना जनरली। कृष्णा उस टाइम चल रहे थे, चलने लग रहे थे। जब वो लोग आए तो यशोदा माँ अपनी गोदी में कृष्ण को उठा के लाई थी, और ओके बाय बाय, अरे ओके। सो जब कृष्णा आए तो वो चलते 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 कहाँ पहुंच गए? राधा रानी उस टाइम तो छोटी थी ना, एक महीने की बात है, एक साल की नहीं, तो वो अपने पलंग पे पड़ी हुई थी ऐसी, जो पालना नहीं होता, तो सब फंक्शन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कृष्णा वहां से छुपके चलते चलते राधा रानी के पास आ गए। और पालना उस टाइम हाइट नहीं होगी, हाइट नीचे होगी, तो उन्होंने झांक के राधा रानी को देखा। बच्चों को वैसे भी शौक होता है दूसरे बच्चों को देखने का, होता है नहीं होता है? उन्होंने देखा, जैसे ही उनको देखा राधा रानी ने अपनी आंख उसी टाइम खोली, क्योंकि राधा सबसे पहले किसके दर्शन करना चाहती थी? कृष्णा के। सोनू ने अपनी आंख खोली और ब्रिजभानु जी ने कहा, ये तो बड़े खुश हो गए, ये क्या हो गया। राधा रानी ने आंख खोली कि मतलब अंधी नहीं है ये, गूंगी नहीं है, बोलने भी लगी। सो वैसे भी जब भी राधा रानी सुबह सुबह उठती हैं तो सबसे पहले किसके दर्शन करती हैं? कृष्ण के। जब सुबह सुबह तो राधा रानी का घर कहाँ है, किसी को पता है कहाँ रहती हैं? गलत, जावट में। जावट राधा रानी का ससुराल है, ससुराल तो समझते होंगे। तो राधा रानी के हस्बैंड का नाम है अभिमन्यु। राधा रानी भगवान की पत्नी थोड़ी ना है, अभिमन्यु। मगर इसमें भी एक सीक्रेट है, मैं बताऊंगा अभी। तो उनका घर जावट में है। अब जावट तो नहीं पता किसी को, बरसाना पता है। बरसाना में राजा रानी का, तो उसको क्या कहते हैं, माइका कहते हैं, क्या कहते हैं फादर के, बरसाना। तो बरसाना राधा रानी का माइका है। और बरसाने में रहने से पहले, तो बरसाने में वृषभानु जी, कीर्तिदा देवी और राधा रानी रहती थी, वहां शिफ्ट हो गए थे वहां। मगर उससे पहले वो कहां रहते थे? रावल में रहते थे। रावल एक जगह है, सुना है रावल? जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो कृष्ण भगवान का जन्म कहां हुआ? गोकुल में, सबको पता है गोकुल में। और उसी गोकुल के पास एक गांव है रावल, वहां पे राधा का जन्म हुआ, वहीं पे रहते थे पहले। ऐसे होता नहीं होता है, जैसे पहले मान लीजिए यहाँ पे भी, तो पहले आज से 10 साल पहले पूरी सब लोग कहां रहते थे? मयूर विहार एरिया में। सब ये एरिया तो पूरा कोई था ही नहीं, पड़बड़गंज में है नहीं, पूरा पूरा कूड़ेदान बना था यहाँ। अब 20 साल बाद सारी पॉपुलेशन शिफ्ट होके यहाँ गए, नहीं हम सब मयूर वाले सब कहाँ गए? यहाँ गए। भाई ऐसे ही हुआ, तो पहले वो रहते थे गोकुल में और रावल में। मगर गोकुल रावल में आपको पता है, कृष्णा सीरियल देखा होगा, कृष्णा किताब पढ़ी होगी, कहीं कहीं असुर अटैक करने लगे, नहीं कभी पूतना आ गई, फिर लंबासुर आ गया, केशी आ गया, तिनावर्त आ गया, तो सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा गोकुल में प्रॉब्लम है, हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहां गोकुल से नंद बाबा और यशोदा मां शिफ्ट होके कहां गए? सबसे पहले आए वृंदावन, छठी कला। छठी कला सुना है? सबसे पहले छठी कला में रहे, तो उसका नाम छठी करा नाम उसका है, इसलिए क्योंकि छठी मतलब पता है क्या होता है? छठी मतलब क्या होता है? हाँ, छह दिन में थोड़े ना आ गए थे वो वहां। वो क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, 6 दिन के नहीं थे वो। तो छठी खड़ा इसलिए क्योंकि वहां पे 6 दिन रहे थे बस, और कुछ नहीं था वहां पे। रहे वहां पे रहने के लिए थोड़े ना आए थे। वहां से जब गोकुल से अपने बैल लेके चले थे, सारा शिफ्ट करने में सब पूरा घरबारी तो लेके चलेंगे, अब उस टाइम अब शिफ्टिंग कंपनी थोड़े ना थी, तो बैल ऐसा भर के आ रहे हैं। फिर गोकुल तो उस तरफ यमुना जी के, तो यमुना जी को पार करके, पार भी तो करना पड़ेगा, तो जहाँ पे यमुना जी का डेप्थ कम थी वहां से सब चल के, सब पुल भी बना होगा वहां पे लकड़ी का, उसे पार करके आए। तो अब एक दिन में आधा ट्रैवल तो नहीं कर नहीं सकते, तो एक दिन में वो छठी करा तक पहुंचे थे। अब छठी करा तक पहुंच सकते हो गोकुल से, अगर आप सुबह चलो 4 बजे तो शाम तक सब लोग वहां पहुंच सकते हो, या बीच में कहीं रुके होंगे, कहीं और भी रुकेंगे मुझे नहीं पता, मगर जनरली जो एक्सप्लेनेशन है, छठी करा के पहुंचे वहां पे रुके। तो वहां पे उन्होंने फिर कैंप लगाया, इमीडिएटली तो नहीं चलेंगे ना वहां पे 6 दिन रहे, और फिर वहां से फिर रुककर आगे कहां गए? फिर नहीं वृंदावन थोड़े ना, फिर वहां से नंदगांव चले गए। तो उन्होंने पहले ही रिसर्च टीम भेज दी थी कि भैया बेस्ट जगह क्या है रहने के लिए, अब इतने सारे असुर अटैक कर रहे हैं, कृष्ण को मारना चाहते हैं, डर गए ना वो। तो उन्होंने कहा बेस्ट जगह रहने के लिए एक पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ पे जल्दी जल्दी अटैक नहीं हो सकता ना पहाड़ पे। इसलिए पहले महल बनाते पहाड़ पे बनाते थे ना, आप महाराष्ट्र में जाओ शिवाजी ये लोग सब पहाड़ पे बनता था ना, कि नीचे से अटैक ऊपर से मार देंगे। तो उन्होंने कहा पहाड़ पे सही है, हम पहाड़ पे रहेंगे। तो उन्होंने रिसर्च करी, एक पहाड़ मिला उनको नंदगांव में, नंदीश्वर, वहां पे वो चले गए। तो वृषभानु जी ने कहा कि भी हम कैसे अलग रहे यहाँ पर, और राधा कैसे अलग रहेगी कृष्ण से। तो इसलिए वो लोग भी रावल से शिफ्ट हुए। शिफ्ट होके कहाँ गए? उन्होंने कहा हमें भी पहाड़ चाहिए अब। वो पहाड़ पे रह रहे, हम भी पहाड़ पे रहे। तो उनको एक और पहाड़ मिल गया वहां साइड में, बरसाना में। सो वहां बरसाना भी पहाड़ है, नंदगांव भी पहाड़ है नहीं, तो वहां बरसाना से सीधा नंदगांव दिखाई देता है। अगर आप देखोगे ना वहां से पीछे से, तो नंद बाबा का जो नंदीश्वर है जो पहाड़, वो दिखाई देगा। तो रोज राधा रानी वहां से खड़े होके कृष्ण के दर्शन करती थी. ऑफकोर्स अब दर्शन कैसे करती थी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत दूर है, उसके लिए टेलीस्कोप चाहिए. क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि वहां से सुबह उठ के देखती थी कि कृष्णा दूध, सुबह सुबह दूध निकालने जाते हैं कृष्णा गाय का, कृष्णा वहां बोलते, तो वहां अपने महल से देखती थी कि दूध निकालने जा रहे हैं. अब कैसे, आई थिंक भगवान है, सुपर आईज होंगी उनकी तो वहां से देख सकती होंगी, समाओ सुपर ईयर्स हैं, सुपर आईज है. एग्जैक्टली क्या कैसे था, बट समझ गए नहीं समझ गए तो आमने सामने हो गया. मगर बरसाना और नंदगांव साधारण हिल नहीं है. वो नंदगांव के जो वो हिल है वो कौन है, शिवजी हैं. एक्चुअली उससे पहले वो पहाड़ थे ही नहीं, पहाड़ ही नहीं थे कुछ. तो जब इन्होंने गोकुल में डिसाइड किया कि हम शिफ्ट होंगे और अपनी रिसर्च टीम भेजी भी ढूंढ के आओ कहाँ कहाँ रहे हम, तो शिवजी ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि भी अब हमारे लिए सेवा करने का अवसर, आगे पहाड़ ढूंढ रहे हैं, वृंदावन पहाड़ का है ही नहीं, गोवर्धन जी हैं एक और है ही नहीं कहीं. आप देख लो पूरे वृंदावन में कहीं पहाड़ नहीं है, राजस्थान फिर और अंदर जाओ कोई भी नहीं है. मजे की बात है पहाड़ ही नहीं है, छोटे छोटे हैं, इतना बड़ा कोई नहीं है, दो ही है बस. तो उन्होंने कहा अवसर आ गया, तो शिव जी ब्रह्मा जी ने कहा अब हम क्या करते हैं, हम पहाड़ के रूप में बन जाते हैं. तो शिव जी ने कहा मैं पहाड़ बन जाता हूँ, मेरे पे कृष्णा रह लेंगे, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहाड़ बनता हूँ, मुझ पे राधा रानी रह लेंगी, उनके चरण सदैव मेरे सर पे पड़ेंगे. शिव जी ने कहा चलो कृष्ण के चरण मेरे सर पे पड़ेंगे. तो इसलिए वो ऑर्डिनरी नहीं है नंदगांव और बरसाना. सो बरसाने माई का था, और फिर जब उनकी शादी हुई तो कहाँ पे शिफ्ट हो गई वो, तब जाबट शिफ्ट हुई थी, जाबट में शिफ्ट हुई. सो तो मैं कथा क्या बता रहा था कि कृष्ण भगवान ने राधा को देखा और राधा ने उस टाइम खोल ली है. दूसरी स्टोरी नहीं थी, सो ये दूसरी स्टोरी थी. और तीसरी स्टोरी है, एक तीसरी स्टोरी है, मगर वो सीक्रेट है, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो अगले साल बताऊंगा रिसर्च करना. मगर जो सेकंड स्टोरी है यमुना वाली, ये हमारे आचार्य लिख रहे हैं, रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं, ललित माधव ने, हम लोग सेकंड स्टोरी को मानते हैं. जो इस अभी जो राधा रानी का जन्म हुआ है वो ऐसे हुआ है, यमुना जी पे आई और ले गए. सो राधा रानी का जन्म हुआ, उसके बाद फिर जब वहां पे शिफ्ट हो गए सब लोग, तो मैंने बताया कि उनका विवाह कहाँ हुआ, जावट में ससुराल हुआ. मगर एक्चुअली उसमें भी बहुत सीक्रेट है. कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से, ये तो डिबेट ही चली थी कि राधा तो पति नहीं है कृष्ण के. तो आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत कुछ चला था. नहीं, सो क्या राधा रानी पत्नी है कृष्ण की या नहीं है, या नहीं, क्या आंसर करते हो, है भी और नहीं भी, दोनों ही आंसर है. आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, भगवान की लीला में ऐसे ही होता है. नहीं, भगवान की लीला चल रही है ना, कोई हमारी थोड़ा ना चल रही है ऑर्डिनरी. तभी आंसर क्या है भी और नहीं भी, यस भी और नो भी है. सो वैसे ऐसे होता है संसार में. नहीं, अगर कभी कभी आप कभी कभी लोग खुश भी होते हैं और दुख भी होते हैं, होता है नहीं होता है. जैसे अगर अगर किसी का बेटा अमेरिका चला जाए तो खुशी होगी नहीं होगी, मगर दुख भी होता है कि हमसे तो दोनों साथ में हुए नहीं. तो क्या पूछेगा आप खुश हो दुखी हो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे मेरा बेटा तो अमेरिका चला गया सेटल हो गया. तो कोई पूछेगा खुश हो या दुखी हो, तो क्या बोलोगे. अब उसको बताने के लिए तो आप कहोगे हाँ मैं बहुत खुश हूँ चलो अमेरिका चला गया, बट एक्चुअली इंटरनली आप दुखी भी हो ना कि दूर चला गया. तो खुश भी हो दुखी भी हो, ऐसी भगवान की लीला में भी है. सो राधा रानी के हस्बैंड कृष्णा है भी और नहीं भी. वो कैसे हैं, क्योंकि पता क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा चुरा लिए थे सारे, चुराए नहीं थे पता है ना, ब्रह्म मोहन लीला चुरा के ले गए. तो वो तो पता है सबको कथा, मगर एक उसमें सीक्रेट कथा नहीं पता. भगवान की लीला में कथाओं के अंदर कथाओं के अंदर कथाओं के अंदर कथा है. अब वो तो भक्त ने सुननी पड़ती है. अब आप कहोगे कथा तो हमने आज तक सुनी नहीं, ना ना ना, ना, ना कथा रामानंद सागर ने दिखाई ना और कौन है पता नहीं, बी आर चोपड़ा ने दिखाई, हम आपकी बात क्यों माने, बट आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता। भगवान की लीला इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट समझते हो, अनंत है, तभी तो अनंत शेष अभी तक अनंत काल तक भगवान के अनंत गुण गाते जा रहे हैं। एक लीला के अंदर एक दरवाजा है, फिर उससे दूसरी लीला में चले जाओगे, फिर उसमें एक दरवाजा, उससे तीसरी लीला में चले जाओगे। अब वो दरवाजा खोलने वाला कौन है, वो मैं हूं, मैं दरवाजा ही तो खोल रहा हूं, अभी दूसरी लीला में ले जा रहा हूं, वो भक्त है आपको। सो ब्रह्म विमोहन एक लीला हुई जिसमें ब्रह्मा जी बच्चों को चोरी करके ले गए, मगर उसमें दरवाजा था एक, और जब उस दरवाजे को खोलोगे तो दूसरी लीला में पहुंच जाओगे। और क्या था, जब ब्रह्मा जी ले गए बच्चों को तो एक साल तक रखा था अपने साथ, पता है ना सबको, और पीछे से एक साल तक भगवान ने सारे सखाओं का रूप लिया हुआ था, सारे फ्रेंड्स का, तो एक साल तक रह रहे थे। तो सारे ब्रज में जितने भी जो है ना, जितने भी ऐसे और जो सखाओं के पेरेंट्स हैं, वो कहने लगे कि हमें अब अपने बच्चे से इतना आकर्षण क्यों हो रहा है। जैसे कृष्ण का फ्रेंड सुदाम था, श्रीदाम थे, श्रीदाम के अपने माता पिता से, सुदाम के माता पिता, मधुमंगल के अपने माता पिता, तो मधुमंगल के माता पिता बोलने लगे कि भाई हमें इतना मधुमंगल से इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, हमें तो हमेशा किससे ज्यादा आकर्षण होता है, कृष्ण से, ब्रज में अपने बच्चे से ज्यादा आकर्षण नहीं होता, सबको किससे होता है। तो उन्होंने कहा हमें तो अपने बच्चे से होने लगा ज्यादा, तो कृष्ण की याद ही नहीं आ रही, पूरे टाइम बच्चे में हम माया में तो नहीं पड़ गए, कि ब्रज में माया ने अटैक तो नहीं कर दिया, हमारा बच्चे भी बन जा रहे हैं अपने, और गाय भी कौन बन गए थे, कृष्णा, तो उनका मन गाय में ही जा रहा था अपनी अपनी। तो उन्होंने कहा बड़ी अजीब सी बात हो गई, सो क्यों जा रहा था, क्योंकि वो सब कौन थे, कृष्णा थे। सो जितने भी ब्रज के जितने भी लड़के थे सब कौन बन गए, कृष्णा बन गए, क्योंकि सारे लड़कों को ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। सो उसमें एक लड़का था अभिमन्यु, अभिमन्यु के मम्मी का नाम क्या था, जटिला, जटिला नाम है अभिमन्यु की मदर का नाम, अभिमन्यु एक लड़का था। तो अभिमन्यु को भी चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए, तो कृष्णा कौन बन गए, अभिमन्यु बन गए, एक साल तक वो अभिमन्यु बन के रहे। तो उस टाइम फिर योग माया चर्चा हो रही थी, तो योग माया भगवान की शक्ति है, तो वो भगवान के धाम में सारी लीला अरेंज करते हैं योग माया। वो मैंने कल नहीं बताया था, पब्लिक प्रोग्राम था, योग माया, माया यहां पे काम करती है, योग माया वहां पे काम करती है, और यहां पे भी जो भक्ति करते हैं उन पे काम करने लगती है। सो वहां पे योग माया ने सोचा कि अब मैं मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अब कृष्ण की किससे शादी, अब राधा की किससे शादी होनी चाहिए, टाइम आ गया कि राधा की शादी किससे होनी चाहिए, कृष्ण से। यशोदा मां की हमेशा से इच्छा थी कि राधा का विवाह किससे हो, कृष्ण से, उन्होंने अपने मन में सोचा हुआ था। सो योग माया ने कहा अब टाइम आ गया, वैसे तो राधा की शादी कृष्ण से देखने में नहीं हो सकती, बाहर से नहीं हो सकती, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मगर अब अभिमन्यु कौन बने हुए थे, कृष्णा। तो योग माया ने क्या किया, राजा रानी का रिश्ता किससे फिक्स कर दिया, अभिमन्यु से, अभिमन्यु और राधा की शादी हो गई। एक्चुअली अभिमन्यु कृष्ण ही थे, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण और राधा की शादी हुई है, और राधा किसकी पत्नी है, कृष्ण की पत्नी, इसलिए राधा का एक नाम, सॉरी कृष्ण का एक नाम है राधापति, राधापति नाम है। अब ये सीक्रेट लीला है, मैंने बताया था एक लीला से एक और दरवाजा खुला, नहीं खुला, अभी एक और दरवाजा खोलूं इसके अंदर, एक और है दरवाजा, ऐसे फिर आपको ले जाएंगे। तो एक लीला के अंदर कई लीलाएं हैं, मगर इसमें एक और दरवाजा है, कि जब अभिमन्यु की शादी हो रही थी ना वहां पर, तो वो तो कृष्णा थे ही, तो साथ साथ पैरेलल एक और चीज चल रही थी। तो यहां पर क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी एक तो अभिमन्यु के रूप में कृष्णा और राधा है, तो राधा दो दो में डिवाइड हो गई। अब भगवान की लीला चल रही है ना, आपको बच्चों की लीला थोड़ी ना चल रही है, अगर सोच रहे एक लड़का लड़की नाच रहे हैं, तो कृष्णा अभिमन्यु के रूप में आ गए वहां और यहाँ पे भी हैं, राधा वहां पे विवाह में भी हैं, और एक दूसरे दूसरे एक डिवाइड हो गई, एक और रूप बना ले राधा ने साइमल्टेनियस, और वहां रूप बनाकर राधा रानी जंगल में चली गई, और जंगल में कृष्णा भी आ गए। और वहां पे फिर ब्रह्मा जी का आह्वान हुआ, ब्रह्मा जी उतर के आए और ब्रह्मा जी ने वैदिक तरीके से, ब्रह्मा जी भगवान राधा और कृष्ण की शादी की और वहां पे ब्रह्मा जी क्या बने, पुरोहित, पुरोहित कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरोहित स्वयं बने ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने अवसर लिया, ये भगवान राधा कृष्ण की शादी कराने का अवसर लिया और उन्होंने राधा और कृष्ण की वहां पे विवाह कराया। कहने का मतलब प्रत्यक्ष भाव से भी विवाह हुआ और परोक्ष भाव से भी विवाह। परोक्ष समझते हो, परोक्ष मतलब हाँ मतलब, तो इनडायरेक्टली भी विवाह हो गया, राधा और अभिमन्यु का वो कृष्ण ही थे, यहाँ पे डायरेक्टली भी विवाह हो गया, इनडायरेक्टली विवाह हुआ वो तो सब देख रहे थे, राधा और अभिमन्यु का विवाह हुआ तो सबके सब इन्वाइटेड थे, मगर जंगल में जो विवाह हुआ वो सिर्फ राधा कृष्ण को और केवल गोपियों को पता था और ब्रह्मा जी को पता था बस, जो राधा रानी की फ्रेंड्स हैं ललिता शाखा ललिता विशाखा उनको पता था बस। और फिर उसके बाद जब राधा रानी का विवाह हुआ कृष्ण के साथ, उसमें एक और दरवाजा है एक्चुअली एक और लीला है, तभी तो भक्त लीला, तभी तो कथा होती थी, तभी तो चर्चा करते रहते थे अंति नहीं है इसका। सो उसके बाद जब विवाह हुआ तो उसके बाद उन दोनों का फिर अभिषेक भी हुआ, अभी ब्रह्मा जी चले गए ना उसके बाद अभिषेक हुआ, इस पर भी बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि अभिषेक कैसे हुआ, फिर राधा और माधव को एक सिंहासन में बिठाया, सारे देवी देवता है, उसको बोलते हैं राधा माधव महोत्सव, सारे देवी देवता है, उन्होंने अभिषेक किया, सारे दुर्गा सची इंद्र की वाइफ, सची और वारुणी जो वरुण देव की वाइफ है, अग्नि की वाइफ, सब लोग आए अटेंड करने, क्योंकि किसका विवाह हो रहा है, राधा और कृष्ण का, स्वयं भगवान और शिव जी ब्रह्मा जी देवी देवता सब लोग आए कि अब ये तो अटेंड करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं है, ये फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं, और इन्विटेशन ओपन था, उनको कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है, ओपन इन्विटेशन था, सब लोग आए, सबका विवाह, सबका अभिषेक हुआ और उस अभिषेक में कृष्ण भगवान ने राधा को एक नाम दिया, क्या नाम है किसी को पता है, वृंदावनेश्वरी। वैसे तो वृंदावन के जो किंग है वो कौन है, वैसे तो चलो नंद बाबा को तो ब्रजेश्वर कहते हैं, ब्रज मंडल के वो हैं, वृंदावनेश्वर एक्चुअली कृष्ण है, वृंदावन के जो ईश्वर है वो कौन है, कृष्णा। उस दिन उन्होंने वृंदावन किसको दान कर दिया, राधा को, उन्होंने कहा अब मैं वृंदावनेश्वर नहीं हूं, अब तुम वृंदावनेश्वरी हो, वृंदावन अब तुम्हारा है, अब तुम्हारी मर्जी होगी तुम जिसको वृंदावन देना चाहती हो दे दो, इसलिए आज भी वृंदावन में क्या बोलते हैं, राधे राधे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वृंदावन तो राधा का है, बिना राधा के वृंदावन मिला ही नहीं सकता, आपको रिवील ही नहीं होगा। गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति सिद्धांता के गुरु, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर थे, भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी। तो जब पहली बार भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी से मिले तो गौर किशोरदास बाबा जी एक सॉन्ग गा रहे थे और सॉन्ग में था राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वंशी पट पे, ऐसे गाते नहीं गाते वो, उन्होंने बनाया था सॉन्ग, वो भी लिखा हुआ है। क्यों गा रहे थे, क्योंकि वृंदावन किसका है, राधा का है। सो देख रहे हो अब कहां से कहां पहुंच गए हम, पता नहीं शुरू कहां से किया था मैं, भूल ही गया, ये दरवाजे खोलने में चक्कर ये होता है कि खो जाते अंदर। सो शुरू कहां से हुआ था, सुखदेव गोस्वामी की जो अशोक कथा के सुनी, नहीं नहीं अभी ये सब कहां आ गए हम, चलो ठीक है। तो ये जन्म हो गया उनका, विवाह हो गया नहीं, सब हो गया नहीं हो गया, इसलिए उनका ससुराल कहाँ है, जावट में है, जहाँ पे अभिमन्यु के साथ रहती है वो, मगर एक्चुअली उसने विवाह तो हो गया अभिमन्यु के साथ, मगर एक और पॉइंट है, प्रॉब्लम आ गई एक फिर, अब योग माया किसकी लीला अरेंज करती है, कृष्ण की करती है ना, सारा अरेंजमेंट कृष्ण करती है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही होती है भगवान की लीला में तो योग माया सॉल्व करती है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि राधा का कृष्ण से विवाह कैसे होगा, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, अवसर ले लिया ना, जब ब्रह्मा जी चोरी कर लिए कर दिया, अब एक और प्रॉब्लम आ गई योग माया के सामने, कृष्णा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, कृष्णा क्या करते हैं, केवल केवल एंजॉय करते हैं, वो प्रॉब्लम थोड़ा ना सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको उन्होंने योग माया को रख दिया, ठीक है, योग माया तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करो और माया किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, इस भौतिक संसार की, दुर्गा देवी इस भौतिक संसार की प्रॉब्लम सॉल्व करती, तभी तो कहते हैं माता ने बुलाया है, मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है चलो भी आप इच्छाएं पूरी करते रहो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और योग माया आध्यात्मिक जगत में सॉल्व करती है, और भक्तों की प्रॉब्लम भी कौन सॉल्व करता है, भक्त कहाँ जाते हैं दुर्गा देवी के पास, हम तो नहीं जाते, हमारी प्रॉब्लम भी कौन सॉल्व करता है, योग माया। अब जनरली तो हम आप राधा की उपासना करते हो, मगर आपको पता ही नहीं योग माया कौन है, योग माया पूर्णमासी है, वृंदावन में जैसे जैसे भगवान की कृपा शक्ति का रूप क्या है, राधा, ऐसे योग माया का भी एक रूप है, उनका नाम है पौर्णमासी, मौसी नहीं है वो, पौर्णमासी है, पौर्णमासी मतलब पूर्णिमा का जो जिस महीने में पूर्णिमा थी ना पौर्णमासी, उस वो प्रकट हुई थी उस टाइम, उस दिन हुई थी या उस दिन वृंदावन आई थी वो, तो ये पौर्णमासी पहले वहां पे रहती थी उज्जैन में, उज्जैन पता है ना यहाँ पे कौन रहते थे, सांदीपिनी मुनि, तो सांदीपिनी मुनि की मम्मी है पौर्णमासी या माँ है समझ लीजिए, और सांदीपिनी मुनि और फिर उनके जो पोते हैं उनका नाम क्या है, मधुमंगल, दैट्स वन थिंग। तो वो जब आई तो वो हैंडल करती हैं सब, बाय द वे तो योग माया ने सोचा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक साल बाद ब्रह्मा जी को पता लगे कोई गड़बड़ हो रही है, नहीं सभी कृष्णा है, तो ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने सारे भगवान के फ्रेंड्स वापस कर दिए, अब वापस करने में कौन आ गया वापस, अभिमन्यु आ गया, अब तो डबल रोल हो गया, अब क्या करोगे, कृष्णा भी अभिमन्यु बैठे हैं और असली अभिमन्यु आ गया, तो कृष्णा ने फिर वहां पे अपना अभिमन्यु का रूप हटा लिया, वो वापस आ गए, क्योंकि सारे जो बने हुए थे सखा वो तो कर लिया वापस, वापस आ गए, मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि राधा रानी की तो अभिमन्यु शादी हुई थी वो कृष्णा थे, अब असली अभिमन्यु आ गया, अब करें क्या, अब राधा रानी उनके यहाँ तो रह नहीं सकती, ऐसे कैसे रहेगी, क्योंकि राधा रानी कौन है, सारी पतिव्रता स्त्रियों में से पतिव्रता शिरोमणि कौन है, राधा है, वो किसी किसी पुरुष की का किसी पुरुष का चलो शक्ल तो छोड़ो स्मरण भी नहीं करती, किसी और पुरुष का स्मरण भी नहीं करती, मतलब राधा रानी जो कि आंख ही नहीं खोल रही थी जन्म से, भगवान जब दिखाई दे तब आंख खोली, मतलब वो क्या किसी और पुरुष का स्मरण करेंगी, असंभव है, इसलिए वो पतिव्रता शिरोमणि है। अब प्रॉब्लम है वो कि और पुरुष आ गया, वो तो अभिमन्यु आ गया, लो अब क्या करें, अब प्रॉब्लम है नहीं है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगी, योग माया। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, मीटिंग हुई क्या करें, तो योग माया ने कहा मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन ये है कि जो राधा रानी तो जाबट में रहेंगी, अभिमन्यु भी होगा, तो हम श्रीमती राधा रानी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, योग माया शक्ति है ना, कुछ भी कर सकती है, सो राधा रानी के भी दो रूप बन गए वहां पर, एक रूप तो राधा रानी की परछाई बन गई, वो परछाई किसके हाथ रही, वो मेनका रैली, और जो असली राधा रानी है उनको योग माया ने छुपा दिया, और वो कहां चली गई, वो कृष्ण के हृदय में है ही नहीं गई, क्या करोगे, जब राशि लाई तो प्रकट हो गई, वैसे भगवान के हृदय में, और सबको लग रहा है कि राधा रानी वहां अभिमन्युओं में है नहीं, वहां जावट में सबको लग रहा है, मगर है नहीं, वहां तो परछाई है सिर्फ, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, इसीलिए जावट इतना फेमस नहीं है, किसी ने सुना जावट, बरसाना ही सुना है ना, बरसाना में जाते हैं राधा अष्टमी में, आपको भाई बरसाना में क्यों आते हैं, जावट में क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पे कौन है, हमें तो परछाई है, राधा है ही नहीं, इसीलिए नहीं जाते राधा अष्टमी, वरना वैसे तो अगर राधा रानी वहां रह रही होती ससुराल में तो जावट नहीं जाते राधा अष्टमी के दिन, तो ये ब्रजवासियों को पता है सारी कथाएं वृंदावन वालों को, क्योंकि वो ये तो सुनते हैं, वो थोड़े ना कोई कोई सास बहु देखते हैं टीवी पे, वो यही सुनते रहते हैं, उनको सब पता है, यहाँ के लोग देखते हैं बकवास, पता ही नहीं कुछ, वो तो बचपन से वहां की, बच्चे बच्चे को पता है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बच्चे बच्चे को पता है वहां ये सारी चीजें, तो वहां पे इसलिए बरसाना में जाते हैं, राधे राधे बोलते हैं और सबको पता है कि असली राधा रानी कहाँ है, बरसाने में है ऋषभानु जी के पास। सो देख लो कितनी सारी सीक्रेट्स आ गई, नहीं आ गई बहुत सारी। वैसे तो अभी बहुत सारी चीजें, अब टाइम भी हो गया है, टाइम बंद कर दूं क्या और सुनना है खत्म कर दूं? कल नहीं, अब कल नहीं है कंटिन्यू, बस आज के दिन ही होगा राधा रानी के बाद, अब पूरे साल नहीं होगा। मैं नहीं बोलता राधा रानी पे कि ऑर्डर ही नहीं, अब भी ऑर्डर से चलते हैं ना हम तो। 12 बजे वैसे राधा रानी का जन्म पता है कब हुआ है? दोपहर को 12 बजे कृष्ण का रात को 12 बजे हुआ है। एग्जैक्ट टाइम तो शायद हमें नहीं पता, कहते मगर सुबह हुआ है, सुबह जन्म क्या मतलब, सुबह मिली थी यमुना जी में, जब ऋषभानु जी स्नान करने गए तो रात को थोड़े ना जाएंगे 12 बजे, मतलब एक्सेप्ट अगर किसी को यूरिन आए कुछ आए तो है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं नहीं
सुबह 4 बजे
दिन में 12 बजे नहीं, दिन में 12 बजे स्नान होता है, क्योंकि अभी जब जब ठंड होती है तो फिर दोपहर को जाते नहीं जाते हैं सन बात करने, गए होंगे वो एनीवे जो भी। हाँ एक और बात है, वैसे फिलहाल सही कह रहे हैं, तो जो जो ब्राह्मण लोग होते थे तो वो अपनी गायत्री करने आते थे, गायत्री पता है ना, गायत्री नहीं पता, ये जो जनेयू होता है, तो तीन संध्याओं में प्रसाद इनके वापस आ, ठीक है। सो ब्राह्मण लोग तो 3 बार संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, सुबह 4 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे संध्या होती है, त्रिसंध्या। तो हो सकता है वो संध्या करने गए हो, संध्या के वक्त नदी में स्नान करके वहां पे बैठ के आपको जप करना पड़ता है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ बट हो सकता है। सो इसीलिए लोग कहते हैं शायद 12 बजे, 12 बजे शायद इसलिए जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स ना नहाने अननेसेसरी, मतलब ऑफकोर्स अगर टॉयलेट आई हो तो फिर आप नहा सकते हो, अब नजी वो बात अलग है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा था, वो कहाँ नहाते थे, टॉयलेट टॉयलेट करने क्या था, यमुना जी में तो नहीं नहाते होंगे, हो भी सकता है।
जितनी दफा टॉयलेट जाओगी उतनी दफा ही नहाना पड़ेगा,
वो तो ठीक
है,
वो तो हम भी है, हम भी ऐसे करते हैं, बट नदी में नहाते हैं कुएं से नहाते हैं भगवान जाने, ठीक है यानी वे। सो ठीक है चलो, पॉइंट यह है कि राधा रानी का जन्म दिन में हुआ है, कृष्ण का दोपहर को हुआ है, सॉरी रात को, राम भगवान का जन्म कब हुआ था?
दिन में
12 बजे हुआ ना, 12 बजे तक करते हैं, राम भगवान का जन्म दिन में हुआ था, कृष्ण का रात को होता है, क्योंकि राम भगवान का दिन में हुआ है इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं जब कृष्ण लीला करूंगा तो फिर, क्योंकि हाँ क्योंकि मैंने जो दिवस है उसको अपनी सेवा में लगा लिया और रात्रि को भी सेवा में लगाना है, तो इसलिए वो रात को आ गए। तो सूर्य वंश है ना, तो सूर्य को कृपा पात्र बन गया, तो चंद्र को भी कृपा पात्र बना लिया, उन्होंने अपने सेवा में लगा लिया। अब शायद राधा रानी इसलिए सुबह मिली होंगी, वॉटेवर, मुझे नहीं पता, बट सुबह मिली थी। सो इसलिए एक्चुअली राधा रानी का फंक्शन हमें सुबह सेलिब्रेट करना चाहिए था, एक्चुअली सुबह 12 बजे ही सेलिब्रेट होता है, मगर क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में सब कुछ उल्टा हो जाता है, नहीं जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हम शाम को कर रहे हैं। सो एनीवे राधा रानी की पूजा क्यों करते हैं, ये तो राधा रानी ये है, पूजा क्यों करते हैं राधा रानी की, अब तो पता होगा आपको, अब तो समझ गए, नहीं समझ गए, राधा रानी कौन है, साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की शक्ति है, शक्ति शक्ति मतयो रवेधा अन्य आराधिता नूनम, इस पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस पे अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि राधा का नाम अन्य आराधना आराधना करती है कृष्ण की, इसलिए व्यासदेव ने बोला अन्य राधा अन्य आराधिता, मगर उसमें एक और पॉइंट है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना मायावादी लोग, वो बोलते हैं अनया मियते इति माया, माया क्या है, जो मियते का मतलब होता है नापना, तो ज्ञानी सोचते हैं कि अपनी बुद्धि से भगवान को नाप लेंगे, मगर व्यासदेव कह रहे हैं नॉनसेंस, अन्य आराधिता इति राधा, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, नापना नहीं पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जो शब्द है ना अन्य आराधिता नूनम, ये सीधा के सीधा मायावादियों को काटने के लिए लिखा है। बाय द वे जस्ट आई एम टॉकिंग फिलोसफी, व्यासदेव हर शब्द से गलत सिद्धांत को, सही सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं और गलत सिद्धांत को काटते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा से सीखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है। राधा रानी मतलब ऑफ कोर्स आई कैन कीप ऑन स्पीकिंग, राधा रानी की, राधा रानी में भोग वासना है ही नहीं, जीरो भोग वासना है। वो अगर कृष्ण से मिलती भी हैं तो किसके आनंद के लिए मिलती हैं, कृष्ण के आनंद के लिए। जब राधा रानी ने, अब राधा रानी ने आंख खोली, उन्होंने सोचा कि मैं कृष्ण को बिना देखे आंख नहीं खोलूंगी, तो ऐसा क्यों सोचा उन्होंने, क्यों सोचा उन्होंने, उनको बड़ा मजा आ रहा है, ऑफ कोर्स आनंद तो है ही उसमें, मगर क्यों सोचा, क्योंकि उसमें किसको आनंद मिलेगा, कृष्ण को आनंद मिलेगा। कृष्णा कृष्णा देखेंगे कि मेरी इतनी अच्छी डिवोटी है, मेरे में इतना प्रेम है कि इसने आंख बंद ही रखी। सो अपना प्रेम, भगवान की प्रेममय सेवा करने, प्रकट करने का एक तरीका था ये। सो जब भी राधा रानी मिलने आती है कृष्ण से, तो कृष्ण के आनंद के लिए उनसे मिलने जाती है, अपने आनंद के लिए कुछ नहीं करती। ये मतलब है राधा का, ये मतलब है गोपी का। हम उनसे यही सीखते हैं कि हमें भगवान की सेवा भगवान के आनंद के लिए करनी है, अपने आनंद के लिए करना बंद कर दो। तब राधा कृष्णा प्रभुपाद कह रहे, तब उनकी सीक्रेट समझ आएगी, जब अपने आनंद के लिए आप प्रयास करना बंद करोगे, भगवान की सेवा करते रहोगे 24 घंटे, सोचते रहोगे क्या करूं सेवा करने के लिए, तब अपनी सेवा, संसार की सेवा छोड़ो भगवान, तब राधा समझ आएगी उस दिन। इसलिए राधा रानी की पूजा करते हैं हम, क्यों करते हैं, सेवा भावना समझने के लिए। राधा अगर कृपा की मूर्ति है तो सेवा की मूर्ति भी है, दोनों है। सो कृपा पाने के लिए क्या करना है, सेवा, ये सिखा रही है राधा, क्योंकि आराधना मतलब ही सेवा होता है। हर सेकंड राधा रानी जब जब अपना मेकअप करती है, मेकअप आप लोग करते हो नहीं करते हो सर, सो आप लोग क्या करते हो, अपना थोबड़ा देखते हो, जो भी आपको आपको लग रहा होगा सुंदर हो, बट कोई ऐश्वर्य राय नहीं है। सो बट राधा जब शीशा देखती हैं, जब अपना मेकअप करती हैं, तो क्या सोचती हैं, ये तो ठीक है हाँ, जब वो शीशा देखती है ना राधा रानी, तो क्या सोचती हैं, तो वो राधा रानी अपने बारे में सोच ही नहीं सकती, वो सोच ही नहीं सकती अपने बारे में, असंभव है, असंभव है वो। सो जब वो देखती हैं तो वो शीशे में अपनी शक्ल तो देखती हैं, अपनी आंख भी देखती है, नहीं अपने आप को ही तो देखोगे, और अपनी आंख के अंदर किसको देखती हैं, कृष्ण को, ये राधा है। ऑर्डिनरी नहीं है वो, हर जगह कृष्ण को देख रहे हैं। जब वो अपने एक्चुअली चैतन्य चरितमृत में एक्सप्लेन है, बट बाय द वे एनीवे ये बहुत हाई टॉपिक्स हैं, मतलब आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दैट, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका पर्पस है कि आगे से आप हिम्मत बोलना कि हम राधा रानी को जानते हैं। कोई नहीं जानता है राधा को, कोई नहीं समझता उनको। समझने के लिए आप भी किसी से मिलने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये होता है, नहीं होता है। अगर आप किसी किंग से मिलना आते हैं तो आपका बिहेवियर भी तो अच्छा होना चाहिए, किंगली आपको पता होना चाहिए ना कैसे बिहेव करना है उसके साथ। अगर आपको किंग का सेक्रेटरी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, तो आपको किंग की नॉलेज होनी चाहिए कि उसके भावना क्या है, वो क्या करता है। तो ऐसी अगर राधा रानी के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, तो आपको समझना पड़ेगा उनकी भावना क्या है, वो कैसी है, कैसे सोचती है। राधा रानी अपने कुंडल पहनती है तो क्या सोचती है, सो ये नहीं हाय मेरे टॉप्स, वो सोचती है, वो कुंडल जब पकड़ती है तो उनको लगता है कि ये कृष्ण के गुणगान है, कृष्ण के गुण है, गुण सुंदर गुण है, और मैं गुण कहाँ ले लगा रही हूँ, गुण कहाँ लगाएंगे, कानों में लगाएंगे। जब काजल लगाती है तो सोचती है ये भगवान का रूप है, और वो कहाँ लगाएंगे, आँख पे। सो इस तरह से राधा रानी, ऐसे बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, अगर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली राधा कृष्णमयी है और कृष्णा राधामयी है, इसलिए कहते हैं कृष्णमयी राधा, एक नाम ही है राधा का, कृष्णमयी है। अभी कैसे अचीव होगा, कोई ऐसा सोच सकता है? आप सोच सकते हैं ऐसे? मतलब इसका 0.00001% भी नहीं सोच सकते हैं, असंभव है ना? मतलब कैसे सोच लोगे? तो ये सोच नहीं सकते आप, ये तो जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये चीज हमें समझ नहीं आ सकती, तब तक नहीं समझ आएगा कि ये लोग ऐसे कैसे सोच रहे हैं। एक दिन आएगा आपका भी मन ऐसा बन जाएगा, मगर वो अपने प्रयास से नहीं हो सकता, वो तो कृपा से होता है, राधा की कृपा से, राधा रानी अपनी कृपा से, अपनी भावना हमें ठीक है, मेरी जी मैं 0.001% जो मेरे में है वो तुम ले लो। और फिर जब आप में आ जाएगा ना तो पता है क्या होगा, जैसे माधवेंद्र पुरी के साथ हो रहा था, माधवेंद्र पुरी जब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जब वो आसमान में बादल देखते थे तो क्या होता था, शाम का स्मरण आता था और बेहोश आते थे 8 घंटे के लिए। आज भी बादल है नहीं, थे नहीं थे तो फिर ठीक है, तो बादल देखे थे नहीं देखे थे, बेहोश हुआ कोई? कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राधा रानी की कृपा अभी हम पे अभी नहीं है, इतनी आसान नहीं है प्राप्त करना, सिर्फ राधे राधे कहने से कृपा नहीं आती, कहना ठीक है। इसलिए चैतन्य प्रभु का आदेश है हरे कृष्णा बोलो और सेवा करो, सेवा करो। आर्ग्यूमेंट होगा है बहुत, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फिलॉसफी ये वो ये वो, भैया पहले बताओ सेवा क्या की है तुमने, किया क्या है भगवान के लिए? राधा ने तो बहुत कर दिया, आपको समझ नहीं आएगा राधा रानी ने किया क्या, मगर अगर मैं लेक्चर दूंगा ना तो आपको पता लगेगा राधा रानी ने सबसे बड़ी सादा सेवा की पूरी वृंदावन लीला में, पूरी कृष्ण लीला में। अब वो कैसे किए वो मैं अभी टॉपिक है ही नहीं, 12 बजे तक तो हम करेंगे नहीं अभी। सो बट उन्होंने बहुत सेवा की है, हर क्षण सेवा की है। सो इस तरह से हम इसलिए पूजा कर रहे हैं राधा रानी की कि हम वो सेवा भावना थोड़ी सी भगवान राधा रानी कृपा से हमारे अंदर भी आ जाए, चाहते हैं ना कि हम भी ऐसे हो जाएं, तो हम हो जाएंगे तो सदैव भगवान का स्मरण रहेगा, सदैव भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा भावना कैसे आएगी, मैंने बताया था सेवा कैसे आती है, सेवा से आती है, काम खत्म हो गया। तो सेवा की मूर्ति राधा, उनकी सेवा करने से फिर सेवा भावना आ जाएगी, बस सिंपल हो गया। सो ये सीक्रेट है राधाष्टमी की आज। हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय।